नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। श्रीमद्भागवतम स्कंद छह अध्याय एक श्लोक संख्या 11 अजामिल के जीवन का इतिहास। कृपया हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। श्री बादरायणी उवाच कर्मणा कर्म निरहारो न हि अत्यन्तिकेष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित् चित्तं विमर्शनम्। श्री बादरायणी उवाच व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, कर्मणा कर्म से कर्म निरहारः सकाम कर्मों का निराकरण नहीं ही निस्संदेह अत्यंतिक अंतिम इष्यते संभव होता है। अविद्वत अधिकारित्वात् ज्ञान हुए बिना प्रायश्चित्तम असली प्रायश्चित विमर्शनम वेदांत का पूर्ण ज्ञान। अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। वेद व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन चूंकि अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करने के उद्देश्य से किए गए कर्म भी सकाम होते हैं, अतएव वे मनुष्य को सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेते हैं वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है, अपितु वे सभी तमोगुण में होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं हो जाता तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होगा। इस तरह ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति निसंदेह पाप पूर्ण कर्म करने के लिए उन्मुख होगा, अतएव असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में प्रबुद्ध होना है। जिससे मनुष्य परम सत्य भगवान को समझता है। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। गुरु सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की परीक्षा ले ली है और ऐसा लगता है कि राजा ने सकाम कर्म से युक्त प्रायश्चित विधि का खंडन करके परीक्षित की एक अवस्था उत्तीर्ण कर ली है। सॉरी परीक्षा की एक अवस्था उत्तीर्ण कर ली है। अब सुखदेव गोस्वामी चिंतन पर ज्ञान के पद का सुझाव रख रहे हैं। कर्मकांड से ज्ञान कांड की ओर अग्रसर होते हुए वे प्रायश्चितम विमर्शनम, असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान है, का सुझाव रखते हैं। विमर्शन चिंतन पर ज्ञान के अनुशीलन का द्योतक है। भगवद गीता में ज्ञान से विहीन कर्मियों की तुलना गधों से की गई है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 15 में कृष्ण कहते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया आपृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। वे दुष्ट तो नितांत मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है और जो असुरों के नास्तिकतावादी स्वभाव में भागीदार बनते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। इस तरह वे कर्मी जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानते, मूढ़ या गधे कहलाते हैं। किंतु विमर्शन की व्याख्या भगवद गीता में भी 15-15 में हुई है, जहाँ पर कृष्ण कहते हैं, वेदै च सर्वै अहम् एव वेद्य। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना है। यदि कोई वेदांत का अध्ययन करता है और चिंतन पर ज्ञान में ही प्रगति करता है परंतु परमेश्वर को नहीं समझता, तो वह मूढ़ का मूढ़ बना रहता है। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय श्लोक संख्या 19 में कहा गया है, जब मनुष्य कृष्ण को समझता है और उनकी शरण में जाता है तभी उसे असली ज्ञान प्राप्त होता है। बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते। इसलिए विद्वान था भौतिक कल्मश से मुक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को समझने का प्रयास करे, क्योंकि ऐसा करने से वह समस्त पवित्र तथा अपवित्र कर्मों पाप पुण्य तथा उनके फलों से तुरंत छूट जाता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्य श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री बादरायणी उवाच, कर्मणा कर्म निरहारो न हि अत्यंतिक इष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। तो हम लोग छठे स्कंद के प्रथम अध्याय में अजामिल के जीवन का इतिहास का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद्भागवतम 10 विषयों का वर्णन करता है, उसमें ये छठा अध्याय है, ये छठा स्कंद का प्रथम अध्याय से पोषणम का वर्णन हुआ है। संरक्षण का वर्णन हुआ है। किस प्रकार भगवान भक्तों का संरक्षण करते हैं। भागवतम के पंचम स्कंध में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया है। यदि ध्यान पूर्वक उन नरकों का वर्णन सुना जाए और पढ़ा जाए ठीक है, इधर ही अच्छा है मेरे लिए, मैं वाला नहीं पहन लिया। पढ़ा जाए और सुना जाए तो व्यक्ति के रुकते रुकते खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पाप जीवों को नरक में इतना दुख दिया जाता है, केवल सुनने मात्र से कोई भी सज्जन व्यक्ति, कोई भी जिसे थोड़ी सी बुद्धि होगी, वो पाप की तरफ नहीं झुकेगा, उसका झुकाव नहीं होगा। तो महाराजा परीक्षित भगवान के परम भक्त थे, महाभागवत थे और राजा होने के कारण प्रजा के पिता थे। तो उन्होंने जब नरक का वर्णन सुना तो बहुत चिंतित हो गए, चिंता से ग्रस्त हो गए। वो सोचने लगे किस प्रकार से जीव नरक से बच सकते हैं, इसका उपाय क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु महाराज से प्रश्न किया, कैसे जीव नरक जाने से बच सकते हैं, क्योंकि नरक में बहुत ही दुख है। दुख तो भौतिक जगत दुखों से व्याप्त है, सब जगह है, फिर भी इस पृथ्वी का दुख तो सहन हो सकता है। स्वर्ग में मृत्यु का दुख है लेकिन आनंद है, इंद्र तृप्ति के कारण, अगाध इंद्र तृप्ति के कारण, लेकिन नरक में तो दुख ही दुख है। तो उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यदि व्यक्ति शरीर छोड़ने के पहले मनु संहिता और धर्मशास्त्र, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 28 प्रकार के धर्मशास्त्र हैं, 80 प्रकार के धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्र के आधार पर कर्म करके यदि पापों से मुक्त हो जाता है तो नरक जाने से बच सकता है। तो परीक्षित महाराज ने श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी के इस मत से सहमत नहीं हुए, इसलिए वो तुरंत कहते हैं दृश्य सुताभ्याम यत पापम जानाम आत्मनो हितम। दृष्ट सुतम, हमने देखा है और सुना है, सुना है कहने का अर्थ शास्त्रों से सुना है, साधुओं से सुना है और अपनी आंख से देखा है, क्योंकि वो राजा थे तो राजा तो प्रतिदिन उनका कार्य है पापियों को सजा देना, तो कभी कभी चोर और पापी पकड़े जाते थे तो सजा देते थे। हम लोग देखते भी हैं अपने दैनिक जीवन में और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि चोर व्यक्ति, गलत करने वाला पापी व्यक्ति, पाप करने वाला, मर्डर करने वाला पकड़ा जाता है, जेल में जाता है, सजा भुगतने के बाद छूटता है लेकिन फिर पाप में पड़ जाता है, वो बचता नहीं है। दृश्य सुताभ्याम यद पापम, उन्होंने देखा और सुना दोनों, इसलिए कहते हैं कोई ये उपाय नहीं है, कोई ये हमें ये उपाय क्षणिक है, क्योंकि आदमी जैसे हम लोग उदाहरण के लिए देखते हैं कोई कोई व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने से मान लीजिए उसको कैंसर हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है तो आपकी मृत्यु निश्चित है क्योंकि कैंसर हो गया, आपने बहुत सिगरेट पिया है, तो बेटर है आप सिगरेट छोड़ दो और दवा लीजिए। तो व्यक्ति, क्योंकि मृत्यु तो बहुत भयावह है, इस छोटी सी चींटियां भी मरना नहीं चाहती, छोटी सी चींटी को टच करेंगे तो वो भी भागेंगे, तो मृत्यु किसी को नहीं चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति डर बस सिगरेट पीना छोड़ देता है और दवा लेता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जो ही ठीक होने के बाद सिगरेट पीने वालों का एसोसिएशन होता है, फिर वो पीने लगता है, क्योंकि सिगरेट दवा से और परहेज से सिगरेट पीने की भावना का निदान नहीं हुआ, तो इसलिए वो फिर पाप में लग जाता है। करोति भूयः बिभत्सः, बिभत्सः का अर्थ है फिर से पाप करने के लिए नहीं करना चाहता है, फिर भी वो करता है, विवश है, फिर भी वो करता है, नहीं करना चाहता। अपने जीवन में हम देखते हैं, अथ केन प्रयुक्तो हम पापम चरति पुंस, भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करता है, अनिच्छन भी वासुदेव बलादि उनियोजते, कहते हैं अथ कौन सी ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को पाप कर्म में लगना अनिच्छन न चाहते हुए, वो नहीं चाहता है। हम अपने जीवन में देखते हैं, अपने जीवन में बहुत कार्य हम लोग नहीं करना चाहते, अपने जीवन में भक्ति करते हुए भी बहुत कार्य हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम कर बैठते हैं और बाद में हम पश्चाताप करते हैं। और बहुत ऐसे संसार में व्यक्ति मिलेंगे, वो पाप वो जानते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पाप का परिणाम क्या है, पुण्य का परिणाम क्या है, फिर भी वो पाप पुण्य के चंगुल से बच नहीं पाते। तो यही प्रश्न है, यही कहते हैं कि हमने अपने राज करते समय, शासन करते समय देखा है कि लोग पाप कर देते हैं, सजा मिलती है और अनुभव भी करते हैं सजा का, फिर भी वो पाप करते हैं, क्योंकि पाप करने की भावना जो है हृदय में अभी भी है, उसका निदान नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि व्यक्ति की पाप करने की भावना ही मिट जाए, हृदय ही स्वच्छ हो जाए, क्योंकि हर भावना हृदय से प्रकट होती है। हृदय से कहां प्रकट होती? मन में। मन में ही हम हर कार्य करने का प्लान बना लेते हैं, और मन में जब प्लान बन जाता है हर कार्य करने का, चाहे पुण्य कार्य है, पाप कार्य, कोई भी कार्य, इसके बाद उस कार्य को आंखों से देखते हैं। देखते क्या देखते हैं? इस टाइप का कार्य कौन का कोई कर रहा है कि नहीं। जब हम पा जाते हैं हाँ ये व्यक्ति कर रहा है, तो हम मुंह से बातचीत करते हैं, फिर इंद्रियों से कार्य करते हैं। तो यदि पाप करने की भावना हृदय से उठेगी, तो हम मन में पाप का प्लान बनाएंगे, आंख से पाप देखेंगे, मुंह से पाप की बातचीत करेंगे, और हमारी इंद्रियां पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए सिपाश सुखदेव गोस्वामी जब उत्तर दिए कर्म कांड, महाराज परीक्षित सहमत नहीं हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि हृदय पवित्र हो जाए, व्यक्ति पाप करने से बच जाएगा, पाप करने से बच जाएगा। तो जब सिपाही सुखदेव गोस्वामी ने सुना कि महाराज हमारा शिष्य ये तो हमारी इस बात से सहमत नहीं है, तो खुश हो गए, क्योंकि गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, गुरु सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की परीक्षा ले ली। कोई भी गुरु नहीं चाहता है उसका शिष्य पाप में फंसे, कर्म कांड में फंसे, कोई भी गुरु नहीं चाहता है। हर प्रकार के गुरु, सत गुरु स्पेशली चाहते हैं कि हमारे शिष्य शुद्ध भक्ति योग में लगे। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, गुरुदेव अपने शिष्य को शुद्ध भक्ति में लगाना चाहते हैं। तो सिपाही सुखदेव गोस्वामी जब सुने कि हाँ हमारा शिष्य कर्म कांड से, मुख्यतः प्रायः है, हम देखते हैं राजा लोग कर्म कांड में लगे रहते हैं, एक यज्ञ के बाद एक, एक के बाद एक करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत उदाहरण है। जब परीक्षित महाराज इस भावना से ऊपर उठ गए, सुखदेव गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हुए। तब कहते हैं कर्मणा कर्म निरहारो न ही आतिन्त इच्छते। अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कहते हैं कर्म, एक व्यक्ति कर्मकांड कर्म करता है, कर्म के हर कर्म का रिएक्शन होता है पाप और पुण्य का, और उस कर्म को के परिणाम का से बचने के लिए, उस कर्म के परिणाम से बचने के लिए वो कर्मकांड करता है, दूसरा कर्म करता है, और जब कर्म का अर्थ है अपनी इंद्रियों इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर्म करता है। तो जब एक बार दुख उठाने लगता है, दुख किसी को नहीं चाहिए, तो लोग ब्राह्मण के पास, कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जाता है, सबके पास जाता है, सलाह लेता है, तो फिर वो सोचता है कर्म का मनु संहिता और धर्मशास्त्र के अनुसार अब जो कर्म किया है उसको, उसके फल को नष्ट कर दूं। लेकिन वो भी एक कर्म है, वो भी कर्म है, लेकिन उसकी ये कर्म कांड से उसका हृदय पवित्र नहीं हुआ, उसकी इंद्रिय तृप्ति की भावना दूर नहीं हुई, इसलिए वो फिर पाप ही करता है। नूनम प्रमत्त है कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीत आपड़ोते। प्रहलाद महाराज कहते हैं जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की भावना से ग्रसित रहेगा तब तक वो पाप कर्म करने से बच नहीं सकता है, वही पाप कर्म है। इसलिए यहां से पाप सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक कर्म से दूसरा कर्म तो कट ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भी कर्म कर रहा है। इसलिए ये प्रायश्चित का कोई अर्थ नहीं होता, प्रायश्चितम विमर्शनम, इस प्रायश्चित का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए परीक्षित महाराज को कर्मकांड से मुक्त होने के बाद सुखदेव गोस्वामी उनको ज्ञान कांड के स्तर पर लाते हैं, ये दूसरी परीक्षा है। एक परीक्षा तो ले लिए, दूसरी परीक्षा है। कहते हैं कि अटिस कर्म कांडी से ज्ञानी कांडी बेटर है। जो कर्म कांड में फंसे हुए हैं, हालांकि दोनों ही अच्छा नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अब भजन लिखते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड विषय भंड, दोनों ही विषय का प्याला है, हो सकता विष का प्याला है, और हो सकता है ये प्याला सोने का हो, लेकिन उसमें तो विष रखा है, विष ही रखा है, तो जो विष लेगा चाहे सोने के प्याले प्याले से ले, चाहे चांदी के प्लास प्याले से ले, चाहे प्लास्टिक प्याले से ले, पर उसकी मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत ही महान है, ये तात्पर्य हमेशा जीव को शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, ये तात्पर्य हमेशा। इसलिए जब सावधानी पूर्वक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ता है तो निश्चित है उसे मिलेगा प्रेम भक्ति और शुद्ध भक्ति का लक्षण, इस तात्पर्य में मिलेगा, हमेशा मिलेगा। इसलिए परम पूजनीय गौर गोविंद महाराज कहा करते थे इतना आसान नहीं है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम समझ सके। जब तक हम अमुक लेवल पर आध्यात्मिकता में भक्ति में उन्नत नहीं हुए तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम साधारण समझते हैं। ज्यों ही हम भक्ति चार नियम पालन करते हुए 16 माला जप करते हुए भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है, तो हम इसी तात्पर्य में दो चार सेंटेंस हमको मिलेगा जो शुद्ध भक्ति के द्वारा हमको प्रेम भक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत सुंदर ढंग से,
जब मनुष्य कृष्ण को समझता है और उनकी शरण में आ जाता है तभी उसे असली ज्ञान प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते। इसलिए विद्वान तथा भौतिक कलमस से मुक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को समझने का प्रयास करे, क्योंकि ऐसा करने से वह समस्त पवित्र था अपवित्र कर्मों पाप पुण्य था उनके फलों से तुरंत छूट जाएगा। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि जब तक हम कृष्ण को समझेंगे नहीं, और भगवद गीता का कोटेशन देते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते। अब यह समझना एक जन्म में नहीं होगा। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जो वेदाध्ययन संपूर्ण शास्त्रों का अभ्यास करते करते एक जन्म में नहीं, ज्ञानी भी कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं। न साधेति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपह त्याग यथा भक्ति ममोर्जित है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भगवान स्वयं कहते हैं न साधेति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव। हे उद्धव, मुझे योग, कोई प्रकाष्ठांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कोई भी योग जो है, और सांख्य योग, ये सब मेरे हृदय को वशीभूत नहीं करते। ये मेरे हृदय को वशीभूत नहीं कर सकते। ये योग तो हृदय, जीव के हृदय के पूर्ण को पूर्ण रूप में पवित्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति योगी बनता जाता है, हालांकि वो पाप कर्मों से निवृत्त होता है, लेकिन फिर भी उसका अहंकार बढ़ता जाता है, भौतिक इच्छाएं छूटती नहीं है, बहुत उच्च कोट की होती है। योग की 8 सिद्धियां हैं, वो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है। और ज्ञानी व्यक्ति तो भगवान से एक होना चाहता है, ज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि उसका हृदय पूर्ण रूप में पवित्र नहीं हुआ। जब तक हृदय पूर्ण रूप में पवित्र नहीं होता है, जीव अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। जो जीव का सुजीवेर, जो जीव का स्वभाव भगवान का सेवक का है, ये सब हमारी सेवाएं अलग अलग स्टेज पे हैं, और वो भी हृदय की पवित्रता के अनुसार। हृदय की पवित्रता के अनुसार हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, और पूर्ण पवित्र हृदय ही भगवान कृष्ण को पूर्ण रूपेण शरणागत हो सकता है। और जो योग आसन ध्यान ज्ञान ये सब हृदय पवित्र करने में फेल हो गए हैं, वैदिक शास्त्रों से बहुत उदाहरण ऐसे मिलते हैं। लेकिन भक्ति ऐसी है, कहते हैं भक्ति, इवन भक्ति ऐसी है, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी जो भक्ति करता है पवित्र हो जाता है। कुत्ता खाने, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी वो पवित्र हो जाता है। भक्त्या अहम एकया ग्राह्यम सध्यावान आत्म पुनः पुमान भक्ति पुनाति मत निष्ठा स्वपाकोप संभवात। कहते हैं भक्ति अहम एकया ग्राह्यम, एक ही भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति ही जीव को पवित्र कर सकती है। मत निष्ठा, कैसी भक्ति? श्रद्धात्मा, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, जिसे साधु शास्त्र गुरु में श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति कैले है, सर्व कर्म कृत है। हम लोग क्या करते हैं,
हम जब अपने प्लान बनाते हैं भक्ति का, श्रद्धा का अर्थ है कि हमारी प्लान होनी चाहिए भक्ति सर्वोपरि है, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य भक्ति का है। इसलिए भक्त लोग जो हैं, जो सिंसियर डिओटी हैं, एक निष्ठ भक्त हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 बजे 2 बजे 3 बजे, आप लोग तो वृंदावन में 1-2 बजे उठते होंगे, सुबह सुबह अर्ली उठ के सबसे पहले काम भक्ति का करते हैं। जब भक्ति का कार्य पूरा हो जाता है, इसके बाद दूसरा प्लान होता है उस शरीर को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। पालन पोषण नहीं करता कैसे चले शरीर, थोड़ा भोजन मिले हम जी सकें, थोड़े कपड़े मिले तन ढक सके, उसके लिए अथक परिश्रम नहीं करता है, उसके लिए अथक परिश्रम नहीं के भक्तों की प्लान होती है। तो इस प्रकार की भावना, जिस प्रकार जब भक्त प्लान करते हैं, और तो अब भक्त जब प्लान करते हैं, भगवान तो चैत्य गुरु के रूप में है, हमारी प्लान के अनुसार हमको बुद्धि देते हैं, हमारी प्लान के अनुसार भगवान बुद्धि, जब हम भक्ति की प्लान करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं चैत्य गुरु के रूप में, और ऐसे भक्त को मिलाते हैं, वो हमारी प्लान में सहयोग करता है, साथ देता है, वो भी ऐसे हमको साथी मिल जाएंगे, वो भी 2 बजे उठने वाला होगा, 1 बजे उठने वाला होगा, माला अच्छे से करना होगा, प्रचार करने वाला होगा, ऐसे ये चैत्य गुरु के रूप में। भक्त को कभी कोई चीट नहीं कर सकता है, भक्त केवल स्वयं को, जब स्वयं वो चीट होना चाहेगा तभी चीट होगा, उसको धोखा कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि भगवान चैत्य गुरु के रूप में यदि भक्ति का प्लान करता है तो भगवान ऐसे भक्त से मिलाएंगे जो उसके प्लान में सहयोग देगा। इसलिए वो भक्त भगवान को इसी अपने प्लान से, भक्ति से भगवान को आकर्षित करता है। कित्वा हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम, भक्ति बसी करोति कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी चा। श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्त स्वामी सिंधु में लिखते हैं, प्रथम अध्याय में ही लिखते हैं, कहते हैं भक्त, भक्ति करने के लिए कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए, भक्ति करने के लिए केवल आए एक ही योग्यता चाहिए, साधु मार्ग अनुगमनम। कैसे साधु महात्मा ने जो हमको रास्ता बता दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने, उस रास्ते पर चले, दूसरी योग्यता नहीं चाहिए। हम चैतन्य चरितामृतम में कथा पाते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जाते हैं, रंगम टेम्पल में एक ब्राह्मण गीता पढ़ रहा था, आप सब लोग कथा का पुराने भक्त हैं, धाम में रहते हैं, सुना है, तो पढ़ रहा था तो उल्टा मतलब सीधा, क्योंकि उसको आता नहीं था, इसलिए ऐसे तैसे पढ़ रहा था, और सभी लोग उसका मजाक करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए, वो समझ गए, पूछे, और जो खोलता था तो उसकी आंख में आंसू आ जाते थे याद करके। तो चैतन्य महाप्रभु जब पूछे कि भाई तुम पंडित जी बाप भगवद गीता पढ़ रहे हो, हाँ हाँ, लेकिन श्रीपाद जी, वो समझ गया सीरियस है, गंभीर है, सब बच्चों जैसे मजाक नहीं कर रहे, हमको पढ़ने आता नहीं, नहीं तुम पढ़ रहे हो, ना ना पढ़ तो कैसे लेके बैठो, क्यों हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया, अनपढ़ व्यक्ति आदेश दिया केवल लेके बैठता हूं, लेकिन जब बैठता हूं तो याद आ जाता है भगवान कितने महान हैं, अपने भक्त का रथ चला, सेनो उभयो मध्य रथम स्थापित मेचुत, अर्जुन कहते हैं क्यों अपने भक्त, भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, लक्ष्मी सत सत संभम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजाम, ऐसे कृष्ण हैं करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा कर रही हैं। भक्त विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, तव इच्छा मते ब्रह्मा करे रसिजन, तुम्ही त सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, कहते हैं कि हे आप तो ईश्वरों के ईश्वर हो, हे ब्रज के राजा नंद बाबा के लाला, आप तो ईश्वरों के भी ईश्वर हो, आपकी केवल इच्छा मात्र से ब्रह्मा सृष्टि की सृजन करते हैं, शिव जी विनाश करते हैं, लक्ष्मी ओ माया जी इस भौतिक जगत का दुर्गा दुर्ग की रचना करती है। आपके आदेश से सूर्य चंद्रमा सब उदय और अस्त होते हैं। मद आपके हवा आपके आदेश, मद भया तो वायु चलत, हवा आपके आदेश से चलती है। कितने महान हैं, इतने महान हैं। लेकिन अर्जुन कहता है सेनवो भयो मध्य रथम स्थापित में चुत है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में आदेश देता है, आदेश देता है। क्यों कि तो हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्ति बसी करोत कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी से सब। इसलिए हमारे आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति भगवान को बस में कर लेती, भक्ति बसी करोत कृष्ण। अर्जुन के बस में आकर रथ चलाए, द्रौपदी के बस में आकर के क्या नहीं किया, पांडवों राजन गुरु श्रीमद भागवतम वर्णन है। श्रीपाद नारद जी कहते हैं कि ओ राजन महाराजा युधिष्ठिर महाराज, आप इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं, राजन गुरु ये राजन ये भगवान कृष्ण कौन है, मुक्तिदात कहर्चित ये मुक्ति देने वाले हैं, मुकुंद हैं, लेकिन आपकी भक्ति से आपके गुरु बने, आपके रक्षक बने, आपके शिक्षक बने, आपके दूत बने, क्या नहीं बने। पांडवों के लिए, भक्तों के लिए भगवान कृष्ण, यहां तक आप ब्रज में रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने आग पी गए, आग पी गए। आप सोचिए जो इस भगवान की लाओ को जब कोई भी व्यक्ति याद करे उसका पत्थर का हृदय पिघल जाएगा, केवल याद करने मात्र से, याद करने मात्र से भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। और थोड़ी भी सेवा, चेतन चरता मृतम वर्णन है कि थोड़ी भी सेवा महान मानते हैं, अति बहुत महान मानते हैं, अल्प सेवा बहु करी माने। थोड़ी सी सेवा, स्वल्पम अप्यस धर्म से त्रायते मातो भयात। पांडवों को इस भौतिक जगत के दावाग्नि से भगवान यूं ही बचा लिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध से कृष्ण है। तो ये लीलाएं जो हैं जीव को आकर्षित करती हैं, जब हम उसको सुनते हैं पढ़ते हैं और लीलाओं का ध्यान करते हैं तो जीव के, कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति किए बगैर नहीं रह सकता है, कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति। और भक्ति यहां यहां तो साधारण बात वर्णन की गई है, भक्ति का पहला लक्षण यहां सुख परीक्षित महाराज किस प्रकार से भक्ति का प्रश्न करते हुए भक्ति की महिमा को सुनना चाहते हैं और कहते हैं कि ये हमको ये नहीं चाहिए ज्ञान कांड कर्म कांड, ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसे हृदय तो पवित्र नहीं होना है। तो सुखदेव गोस्वामी को अपने गुरु महाराज को मौका देते हैं शुद्ध भक्ति का वर्णन करने के लिए, वहां श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी तब वर्णन करते हैं के चित केवल या भक्त्या वासुदेव पुराण अघम धुनवंत काशेन निहारम यु भास्कर है। कहते हैं बहुत प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, कहते हैं केचित केवल या भक्त्या, केवल कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वासुदेव पुराण किसकी भक्ति, इस भौतिक जगत में कितना भ्रम है, कितना भ्रम है। हम लोग भक्ति करते हुए भी कितने भ्रम में है, समटा साधन में भ्रम है, साध्य वस्तु में भ्रम है, साधु में भ्रम है, क्योंकि हम शास्त्र अभ्यास नहीं करते। शास्त्र अभ्यासनम, प्रतिदिन अपना एक ही कार्य होना चाहिए, शास्त्र का अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए। वो शास्त्र का अभ्यास करने से साधु का पता चलता है, साधु के मार्गदर्शन करने पर हमारे भ्रम, मार्गदर्शन पर चलने पर हमारा भ्रम दूर होता है। ये समझना चाहिए, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं शास्त्र से हमको पता चलता है साधु कौन है असाधु कौन है। जब इस प्रकार से खोते खोते चैत्य गुरु के मार्गदर्शन में हमें कोई महात्मा मिलता है, उसे दीक्षा लेते हैं, जैसे सोसाइटी से जुड़ते हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं सोसाइटी से जुड़े हैं। यहाँ तो बहुत अस्पष्ट है महात्मा कौन है दुरात्मा कौन है, प्रभुपाद जी की बुक पढ़ करके हम समझ सकते हैं। जो शास्त्र को अभ्यास करते हैं, तात्पर्य को पढ़ते हैं, तो चैत्य गुरु हैं, तो क्यों नहीं शुद्ध भक्ति में मार्गदर्शन करें। लेकिन हमारी इच्छा तो होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ना है, हमको बढ़ना है। तो इसलिए परीक्षित महाराज को आगे बढ़ना था, तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत कहा केचित केवल भक्ता वासुदेव पराण अघम धुनुमंती। कहते हैं कि जो हजारों हजारों लाखों यज्ञ करने के बाद भी पाप को धो नहीं सकते हैं, ये भक्ति तो यूं ही जैसे सूर्य उदय होता है, पहली रोशनी अंधकार को दूर करती है। अघम धुनवंती का पहली रोशनी, सूर्य का कार अंधकार को तो प्रकाश आता है, अंधकार दूर होगा। उसी प्रकार से भक्ति जो व्यक्ति करता है, जो भक्ति करता है, यथा अग्नि सुसमाधारचित करोत ये धांस उद्धव है तथा मद विषय भक्ति। भगवान स्वयं कहते हैं 11वें स्कंध में, कहते हैं हे उद्धव, जैसे अग्नि जो है हिमालय पहाड़ जैसे घास फूर के ढेर को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार से मेरी भक्ति व्यक्ति के पाप को नष्ट कर देती है, मुक्त हो जाता है वो भी साइट। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं क्लेशाग्नि पाप हरत्वम अप्राप्त अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण उपलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। कहते हैं भगवान विष्णु की भक्ति जो है, जो प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट और बीज ये पाप रूप में हमारे हृदय में संचित हैं, सब पाप को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आप हम उदाहरण देखते हैं मृगारी हंटर, उदाहरण चेतन महाप्रभु इस कथा का वर्णन करते हैं। इतना महान पापी को जीव का आधा मार करके आनंद लेता था, आधा मारा जीव आधा मार करके आनंद लेता था, पर नारद जी के एसोसिएशन से, उनके मार्गदर्शन के द्वारा भक्ति करने से एक चींटी भी नहीं मारना चाहता था, एक चींटी भी नहीं मारना चाहता। ये भक्ति है, ये भक्ति है। जब हम शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति गंभीरता पूर्वक, भक्ति मैं हमेशा कहा करता हूं, भक्ति प्रारंभ करना बहुत आसान है, पर भक्ति में प्रगति करना, भक्ति पूरा करना लोहे का चना चबाना है। क्योंकि भगवान भक्त के सेवक बनते हैं, भगवान भक्ति भगवान को बस में करती है, भगवान को बस में करती है। तो ऐसी भक्ति आप देखेंगे जितने भी महान भक्त हुए हैं वो बहुत तपस्या, बहुत परिश्रम से, बहुत सावधानी पूर्वक भक्ति करते हैं, ऐसे भक्ति को तिरस्कृत नहीं करते हैं, बहुत सावधानी नम्रता पूर्वक, हमेशा कोई अपराध न हो जाए, भक्ति करने में कोई त्रुटि न हो जाए। जो अच्छे भक्त हैं, जो बहुत सिंसियर हैं, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु के मुख से वर्णन है। कहते हैं कि जो
व्यक्ति सिंसियर है और हमेशा उसको पता है, फिर भी वो इंक्वायरी करता है, जो चीज का पता है, ये भक्त का स्वभाव है, वो पता है क्यों इंक्वायरी करता है, दूसरे के लिए नहीं, वो सावधानी बरत, कहीं कुछ मिस्टेक न हो जाए, कहीं कुछ गलती न हो जाए, कहीं कुछ मिस्टेक न हो जाए, इसलिए हमेशा इंक्वायरी करता है। ऐसे भक्त के लिए भक्ति बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि हमेशा वो सावधान है। हरे कृष्ण। यदि कोई किसी का प्रश्न है, मैं 5 मिनट पहले बंद किया, कोई एक एक प्रश्न है, कोई टीका है, कोई टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हृदय की भावना मन मस्तिष्क में उपस्थित होती है। मैंने बताया हृदय की भावना मन में मस्तिष्क में आती है, मस्तिष्क से आँखों पे आती है, आँखों पर जिह्वा पर आती है, उसके बाद इंद्रियों पर आती है। हाँ, बुद्धि भी रहती है, मन दोनों रहता है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि मन में अंतर है, दोनों ही भौतिक हैं पर अंतर है। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, आपका प्रश्न समझ गया, पहले सुनिए। बुद्धि का अर्थ है वो शास्त्र के अनुसार सोचेगी, ये शास्त्र में लिखा है, मन अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए सोचेगा, यही अंतर है। मन कहेगा ये कर लो, बुद्धि कहेगी नहीं नहीं, भगवद्गीता में ऐसा वर्णन है, हमारे गुरु महाराज ने साधुओं ने ऐसे मना किया है, लेकिन मन ठीक है, कोई नहीं देखता थोड़ी है। अब हाँ, बुद्धि भी खींचेगी, मन भी खींचेगा, मन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए खींचेगा, बुद्धि से मन कंट्रोल होगा, तो सॉरी मन और इंद्रियां दोनों कंट्रोल होंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, बढ़ता ही है,
बढ़ता है,
है? अरे सबसे महान अहंकार तो ज्ञान का होता है, ज्ञान खाली इसलिए कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति धनी से भी ज्यादा अहंकार होता है, ज्ञानी व्यक्ति धन से भी ज्यादा अहंकार होता है, वो सबसे महान समझता है, उसको कोई छोटी सी सीट भी नहीं चाहिए, कोई ज्ञानी को विद्वान को बुलाइए। आजकल साइंटिस्ट लोग हैं, विद्वान लोग हैं, फिलासफर लोग हैं, वो तो बहुत ऊंचा अहंकार होता है उनका, हमारे से बड़ भगवद्गीता नहीं मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानेंगे, शास्त्र को नहीं मानेंगे, ज्ञान का अहंकार होता है। और इसमें भी जो माया अपहृत ज्ञान, कभी कभी शास्त्र पढ़ के शास्त्र पढ़ने का भी अहंकार होता है, आप समझ रहे हैं ना, वो सबसे महान समझते हैं। ये तो सिंपल चीज है, इसमें कोई समझना बड़ी बात नहीं है। ना वो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, दशम स्कंध में, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है कभी गलती हो जाए, क्योंकि सावधान व्यक्ति का अर्थ है शास्त्र और गुरु को फॉलो करेगा, आप सही, इसको सावधान कहते हैं। ऐसा नहीं मन से डिसीजन लेगा, वो कुछ मिस्टेक हो गया तो देखेगा हमारा गलती हो गई, तो इसका निदान शास्त्र में क्या है, साधु से सलाह लेगा फिर करेगा। तो वर्णन है किसी से गलती हो जाए तो दूसरे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, श्रवणम कीर्तनम से ही प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन जिसी से गलती हो जाती है तो ऐसा भक्त उस शास्त्र तुरंत हमसे, गलती कैसे पता चलेगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, वो मन से नहीं कि हमको ये मेरा लॉस हो गया है, धोखा हो गया, नहीं, जैसे गलती हुई उस शास्त्र अभ्यास करता है, पढ़ता है, तो इसलिए उसे पता चलेगा कि हमने गलती किया, साधु के पास जाता है, गुरुदेव के पास जाता है, हमने मिस्टेक किया, इसका उपाय क्या है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रभु।